एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी। दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत की गहराई में उतरने वाले हैं जिनकी कहानी सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं बल्कि उससे कहीं आगे इंसान होने के मतलब तक जाती है। हम बात कर रहे हैं सिडनी पॉइटियर और उनकी आत्मकथा द मेजर ऑफ अ मैन, अ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी की।
जी हाँ, और ये वाकई कोई आम सेलिब्रिटी संस्मरण नहीं है। ये तो मतलब गरिमा, चरित्र, हमारे अपने उसूलों पर टिके रहना, इन सब पर एक बहुत ही गहरी सोच है।
सिडनी पॉइटियर, नाम तो सुना ही होगा। 1927 से 2022 तक बहामियन अमेरिकन एक्टर, डायरेक्टर और सही मायनों में एक सांस्कृतिक प्रतीक।
और हाँ, इतिहास रचने वाले वो पहले अश्वेत एक्टर जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार मिला।
बिल्कुल,
लेकिन उनका असर हॉलीवुड से कहीं ज्यादा बड़ा था। अमरीकी समाज, खासतौर पर नागरिक अधिकारों के इतिहास में वो एक बहुत बड़ी, एक परिवर्तन लाने वाली हस्ती थे।
हाँ, और ये किताब भी यही पूछती है, ये नहीं कि मैं मशहूर कैसे हुआ बल्कि ये कि मैं वो इंसान कैसे बना जो मैं हूँ। फोकस शोहरत पर है ही नहीं।
सही कहा, फोकस है नैतिक दिशा पर, चरित्र पर। इसमें आपको हॉलीवुड की गॉसिप या कॉन्ट्रोवर्सी नहीं मिलेगी। ये जिंदगी के बुनियादी सवाल उठाती है, भाई हमारी असली कीमत क्या है, मुश्किल हालात में अपने ईमान पर कैसे टिके रहें, हम दुनिया में क्या छोड़कर जा रहे हैं। ये किताब इस बात का सबूत है कि इंसान का असली माप बाहरी सफलताओं से नहीं बल्कि उसके अंदर की दिशा, उसके उसूलों से होता है।
तो चलिए उनके इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती सालों से जिन्होंने उनकी शख्सियत घड़ी, उनके बनने के साल, फॉर्मेटिव ईयर्स।
हाँ, उनका तो जन्म ही एक कहानी है। 1927 में मियामी में पैदा हुए, वो भी वक्त से 2 महीने पहले। उनके माता पिता एवलिन और रेजिनाल्ड पॉइटियर बहामास के कैट आइलैंड पर टमाटर किसान थे।
अच्छा,
हाँ, वो फसल बेचने मियामी आए थे और वहीं सिडनी का जन्म हो गया।
इतने कमजोर थे कि पिता की हथेली में समा जाए, बचने की उम्मीद मतलब ना के बराबर थी।
मैंने भी पढ़ा कि पिता रेजिनाल्ड ने तो एक जूते का डब्बा तैयार कर लिया था ताबूत के लिए।
सोचकर भी अजीब लगता है।
बिल्कुल, लेकिन माँ एवलिन, उनका विश्वास गजब का था। वो एक ज्योतिषी के पास गईं जिसने कहा, नहीं, ये बच्चा जिएगा, और सिर्फ जिएगा नहीं बल्कि राजाओं के साथ उठेगा बैठेगा।
कमाल है। और बचपन बीता कैट आइलैंड पर, गरीबी तो थी।
हाँ, बहुत। बिजली नहीं, बहता पानी नहीं, कोई मॉडर्न दवा दारू नहीं, लेकिन आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से वो जगह बहुत अमीर थी। उनके माँ बाप ही उनके पहले टीचर थे। पिता से सीखा कि जुबान का क्या मोल है, मेहनत की क्या इज्जत है, और माँ एवलिन से मिली सहानुभूति और हर इंसान में अच्छाई देखने का नजरिया।
और जो सबसे खास बात है उस जगह की, वो ये कि वहां नस्ल या रंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी कीमत आपके चरित्र से थी, आपकी चमड़ी के रंग से नहीं। ये जो आत्मसम्मान की भावना उनमें बचपन में बनी ना, ये बाद में उनकी सबसे बड़ी ढाल बनी।
फिर 10 साल की उम्र में नसाओ आए शहर।
जी,
और यहाँ पहली बार दुनिया की असलियत देखी, आईना देखा पहली बार, कारें देखी, और समाज में जो पैसे और रंग के आधार पर भेदभाव था वो महसूस किया। कैट आइलैंड से बिल्कुल अलग दुनिया।
यहीं से उनका सामना शुरू हुआ उस दुनिया से जो बाहर इंतजार कर रही थी, और फिर शुरू होता है उदय और संघर्ष, द राइज एंड द स्ट्रगल का दौर।
15 साल की उम्र में माँ बाप ने उन्हें मियामी भेज दिया, बड़े भाई के पास, और यहाँ अमेरिका के साउथ में उनका पहली बार सामना हुआ संस्थागत नस्लवाद से, वो भी बहुत भयानक तरीके से। हाँ, किताब में जिक्र है कि पुलिस ने बेवजह उन पर बंदूक तान दी थी। ये उनके लिए एक बड़ा शौक था। अपनी पहचान को लेकर सवाल उठने लगे मन में।
बिल्कुल, फिर 16 की उम्र में कुछ ही डॉलर लेकर न्यूयॉर्क शहर पहुंच गए अकेले,
और वो शुरुआती दिन बहुत कठिन थे।
बहुत ज्यादा, कभी बस स्टेशन के बाथरूम में सोना, कभी इमारतों की छतों पर, रेस्टोरेंट में बर्तन मांजे, ठंड, अकेलापन, सब कुछ झेला।
लेकिन कहते हैं ना, अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। यही उनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ आया।
हाँ, वो बुजुर्ग यहूदी वेटर वाली घटना। जिस रेस्टोरेंट में वो बर्तन मांजते थे, वहां एक उम्रदराज वेटर थे। उन्होंने देखा कि सिडनी पढ़ना चाहते हैं पर उन्हें आता नहीं,
और उन्होंने मदद की।
रोज अखबार लाते और धीरे धीरे उन्हें पढ़ना सिखाते। ये बिना किसी भेदभाव के सिर्फ इंसानियत के नाते की गई मदद थी। इसने सिडनी पर गहरा असर डाला।
इसने ना सिर्फ उन्हें पढ़ना सिखाया बल्कि दुनिया के दरवाजे खोल दिए, इंसानियत में उनका भरोसा मजबूत किया।
सही बात है। और फिर पढ़ने की इसी काबिलियत के साथ वो गए अमेरिकन नीग्रो थिएटर ANT में ऑडिशन देने।
लेकिन वहां तो बेइज्जती हुई
बुरी तरह। उनके बहामियां लहजे और पढ़ने के तरीके का मजाक उड़ाया गया। कहा जाओ तुम बर्तन ही मांजो, एक्टिंग तुम्हारे बस की नहीं।
उफ, लेकिन सिडनी पॉइटिया हार मानने वालों में से नहीं थे।
बिल्कुल नहीं। इस बेइज्जती ने उनके अंदर जैसे आग लगा दी। अगले 6 महीने उन्होंने सिर्फ एक ही धुन लगा ली, अपना लहजा सुधारना और पढ़ना सीखना। रेडियो सुनते रहते थे लगातार।
और फिर?
फिर वापस ANT गए। इस बार कहा ठीक है मुझे एक्टिंग मत सिखाओ, मैं यहाँ चौकीदारी कर लूंगा, बस मुझे यहाँ रहने दो, सीखने दो। ये थी उनकी लगन और उन्हें रख लिया गया।
और यहीं से नींव पड़ी उनकी असाधारण उपलब्धियों और विरासत की,
पीक अचीवमेंट्स एंड लेगेसी की। पहली फिल्म मिली 1950 में, नो वे आउट। उसमें उन्होंने एक अश्वेत डॉक्टर का रोल किया था और उन्हें शुरू से ये एहसास था कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, उनकी जिम्मेदारी बड़ी है।
क्या जिम्मेदारी?
अपने समुदाय का सही प्रतिनिधित्व करने की। उन्होंने तभी तय कर लिया था कि वो कभी भी ऐसे रोल नहीं करेंगे जो अश्वेत लोगों को कमतर या मजाक का पात्र दिखाएं, जैसे नौकर या विदूषक वाले रोल।
भले ही इसके लिए काम छोड़ना पड़े, पैसे का नुकसान हो।
हाँ बिल्कुल, ये उसूलों पर टिके रहने वाली बात थी और इसी वजह से इंडस्ट्री में उनकी इज्जत बनी। ये आसान नहीं था, जैसा आपने कहा काफी संघर्ष करना पड़ा।
हाँ, लेकिन धीरे धीरे अच्छी भूमिकाएं मिली। क्राई, द बिलवेड कंट्री, ब्लैकबोर्ड जंगल, और फिर आई द डिफाइंट वंस 1958 में टोनी कर्टिस के साथ।
इस फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया और इसी के लिए उन्हें पहला ऑस्कर नॉमिनेशन मिला, किसी अश्वेत पुरुष एक्टर के लिए पहली बार।
और फिर आया 1964 का वो ऐतिहासिक दिन, लिलीज ऑफ द फील्ड के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर।
वो पल सिर्फ सिडनी पॉइटियर के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रंग भेद के खिलाफ लड़ रहे लोगों के लिए एक मील का पत्थर था। उन्होंने खुद कहा कि उस वक्त खुशी से ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास हावी था।
हाँ, कि अब लाखों लोगों की उम्मीदें उनसे जुड़ गई हैं, वो एक प्रतीक बन गए थे।
बिल्कुल। अब इन 1967 तो उनके करियर का शिखर था। 3 बहुत महत्वपूर्ण फिल्में एक ही साल में, टू सर्व विद लव, इन द हीट ऑफ द नाइट,
जिसमें उन्होंने वर्जिल टिब्स का वो यादगार रोल किया था।
हाँ, और गेस हूज कमिंग टू डिनर, उस वक्त वो दुनिया के सबसे बड़े मूवी स्टार थे।
बाद के सालों में उन्होंने डायरेक्शन में भी कदम रखा
और कामयाब भी रहे। अपटाउन सैटरडे नाइट, स्टर क्रेजी जैसी फिल्में डायरेक्ट की। ये फिल्में खास थीं क्योंकि इनमें अश्वेत कहानियों और किरदारों को उनके अपने नजरिए से बिना किसी दबाव के दिखाया गया था।
अपने जीवन के आखिरी दौर में वो जापान में भामास के राजदूत भी रहे और उनका फोकस परिवार पर रहा, पत्नी जोआना शिमकुस और उनकी 6 बेटियां, और जिंदगी के गहरे सवालों पर मनन करने पर।
ये किताब द मेजर ऑफ अ मैन उसी चिंतन का नतीजा है।
तो उनके मूल दर्शन और मूल्यों, कोर फिलॉसफी और वैल्यूज की बात करें तो क्या चीज उनके लिए सबसे अहम थी?
मेरे ख्याल से 2 बातें सबसे ऊपर थीं। एक, चरित्र की सर्वोच्चता, मतलब आपका बर्ताव, आपकी ईमानदारी सबसे जरूरी है। और दूसरी, हर इंसान की अंदरूनी गरिमा, उसकी इज्जत। उनका मानना था कि असली माप पैसे, शोहरत या बाहरी हालात से नहीं होता।
हाँ, बल्कि इस बात से होता है कि आप कितने सच्चे हैं, दूसरों के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, और मुश्किलों में अपना आत्मसम्मान कैसे बचाए रखते हैं। वो इसे अपना आध्यात्मिक कोर कहते थे।
बिल्कुल, ये अंदर की मजबूती जो उन्हें अपने माता पिता से विरासत में मिली थी, यही उन्हें नस्लवाद जैसी बाहरी मुश्किलों से बचाती रही।
उनका एक और विचार था कि हम हालात नहीं चुन सकते पर अपने उसूल चुन सकते हैं और उन पर चल सकते हैं।
हाँ, मतलब जिंदगी को खुद गढ़ना, एक्टिव सेल्फ क्रिएशन। वो कॉस्मिक बातचीत की भी बात करते हैं कि यूनिवर्स हमारे इरादों, हमारी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देता है।
उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? किताब में 3 मुख्य बातें नजर आती हैं।
बताइए।
पहला, माता पिता का सम्मान। वो कोई भी फैसला लेने से पहले सोचते थे कि उनके माता पिता रेजिनल्ड और एवेलिन इस बारे में क्या सोचते। उनकी दी हुई सीख उनके लिए एक पवित्र अमानत थी।
दूसरा,
एक पिता के तौर पर उनकी जिम्मेदारी। ये किताब एक तरह से उनकी सबसे छोटी बेटी के नाम लिखी गई है। अपनी 6 बेटियों के लिए वो बहुत संजीदा थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटियों में भी वही मूल्य हों, आत्मसम्मान, ईमानदारी और पूरी इंसानियत से जुड़ाव का एहसास।
और तीसरा,
नस्लीय धारणाओं को चुनौती देना। वो जानते थे कि वो सिर्फ एक्टर नहीं है, वो एक प्रतीक है। इसलिए उन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल समाज बदलने के लिए किया।
हाँ, वो जानबूझकर ऐसे रोल चुनते थे जिनमें अश्वेत किरदारों को जटिल, इज्जतदार और मानवीय दिखाया जाए, ताकि घिसी पिटी सोच टूट सके।
इसी को वो कहते थे मानवीकरण का गुरिल्ला युद्ध।
बिल्कुल, मतलब सीधे टकराव के बजाय किरदारों के जरिए धीरे धीरे सोच बदलना, बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीका था।
अच्छा, और मुश्किलों का सामना वो कैसे करते थे? नस्लवाद, आलोचना।
देखिए, पहला तो वही अंदरूनी मजबूती। जब भी कोई हमला होता, वो नफरत को अपने अंदर लेने से इनकार कर देते थे, अपने आत्मसम्मान पर टिके रहते थे। दूसरा, शांत लगन। रिजेक्शन या बेइज्जती का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि चुपचाप खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश से देते थे। रुकावटों को वो चरित्र बनाने का मौका मानते थे।
और तीसरा, सोच समझ कर विरोध। जैसे हॉलीवुड में अपमानजनक रोल ठुकराना, ये खामोश पर बहुत ताकतवर कदम था।
हाँ, या फिर इन द हीट ऑफ द नाइट का वो थप्पड़ वाला सीन याद है?
हाँ बिल्कुल।
वो सीन स्क्रिप्ट में नहीं था, पोइटियर ने जोर देकर उसे डलवाया था, क्योंकि वो जानते थे कि एक अश्वेत आदमी का एक गोरे आदमी को थप्पड़ मारना स्क्रीन पर कितना बड़ा संदेश देगा। ये था उनका स्ट्रेटेजिक रेजिस्टेंस।
कमाल है। अब बात करते हैं उनकी जिंदगी के तीन ऐसे मोड़ों, 3 पिवोटल टर्निंग पॉइंट्स की, जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहला कौन सा था?
मेरे हिसाब से पहला था वो वेटर और अखबार वाली घटना। लगभग 1944 की बात है।
हाँ, न्यूयॉर्क में जब वो किशोर थे, बर्तन मांजते थे और पढ़ना नहीं जानते थे।
और वो बुजुर्ग यहूदी वेटर जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के रोज अखबार से उन्हें पढ़ना सिखाया, ये उनके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव था।
क्यों इतना अहम था ये?
क्योंकि ये इंसानियत का एक ऐसा रूप था जो नस्ल और धर्म से परे था। इसने दिखाया कि अंधेरे में भी रोशनी मिल सकती है। साक्षरता ने उनके लिए एक्टिंग और भविष्य के दरवाजे खोल दिए, और इंसानियत में उनका विश्वास मजबूत हुआ। वो नौउम्मीदी से उम्मीद की तरफ बढ़े।
सही। दूसरा बड़ा मोड़,
जाहिर है, ऑस्कर जीतना, विनिंग द एकेडमी अवार्ड 1964 में लिलीज ऑफ द फील्ड के लिए।
पहला अश्वेत बेस्ट एक्टर।
हाँ, ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये हॉलीवुड में एक बहुत बड़ी दीवार का टूटना था, पूरे देश के लिए नस्लीय प्रगति का एक प्रतीक।
लेकिन जैसा हमने पहले बात की, ये उनके लिए मिला जुला एहसास था, खुशी भी और डर भी।
हाँ, उन्होंने महसूस किया कि अब उन पर इतिहास का और लाखों लोगों की उम्मीदों का बोझ है। वो सम्मानित एक्टर से एक ग्लोबल आइकन बन गए। ताकत मिली, पर साथ ही जबरदस्त जांच पड़ताल और दबाव भी आया। वो अब सिर्फ सिडनी पॉइंटियर नहीं थे, वो एक मशाल लेकर चल रहे थे।
और तीसरा महत्वपूर्ण मोड़, ये शायद थोड़ा मुश्किल था उनके लिए।
हाँ, तीसरा था अंकल टॉम के आरोप।
अंकल टॉम एक्यूजेशन
जी।
ये 1960 के दशक के आखिर की बात है, सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद, जब ब्लैक पावर मूवमेंट उभर रहा था।
तब उन्हीं के समुदाय के कुछ आलोचकों ने उन पर उंगली उठाई।
बिल्कुल। कहा गया कि उनके किरदार, जो अक्सर नेक और अहिंसक होते हैं, वो असल में अंकल टॉम जैसे हैं।
मतलब ऐसे किरदार जो गोरे दर्शकों को सहज महसूस कराने के लिए बनाए गए हैं, न कि अश्वेतों की असलियत दिखाने के लिए।
ये तो बहुत दुखद रहा होगा। जिस समुदाय का आप भला चाह रहे हैं, वही आप पर सवाल उठा रहा है।
और ज्यादा, ये उनके लिए बहुत दर्दनाक और कंफ्यूज करने वाला वक्त था। इस आलोचना ने उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर किया। उन्हें एहसास हुआ कि समाज बदल रहा है, बातचीत का तरीका बदल रहा है।
और इसका नतीजा क्या निकला?
दिलचस्प बात यह है कि इसी आलोचना ने उन्हें डायरेक्शन की तरफ और मजबूती से धकेला। उन्हें लगा कि डायरेक्टर बनकर वो ज्यादा आजादी से, बिना किसी बाहरी दबाव के, अश्वेत कहानियों को अपने नजरिए से कह पाएंगे।
तो ये थे तीन बड़े मोड़। अब अगर हम सोचें कि पॉटियर की जिंदगी से हमें इंसानी तौर पर क्या सबक, ह्यूमन लेसन्स एंड रिफ्लेक्शन।
देखिए, पहली बात तो साफ है, ये मुश्किलों पर जीत की एक असाधारण कहानी है। गरीबी, नस्लवाद, अनपढ़ता, इन सब से लड़कर वो कहां से कहां पहुंचे।
हाँ, और ये कहानी मेंटर्स यानी गुरुओं की अहमियत भी बताती है। वो वेटर, उनके माता पिता, किसी न किसी ने सही वक्त पर हाथ थामा।
बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी के एहसास को भी उजागर करती है, चाहे वो अपने समुदाय के प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी हो या फिर एक पिता होने की।
उनकी कहानी सिर्फ सफलता पाने के बारे में नहीं है, बल्कि सफलता से आगे जाकर जिंदगी में अर्थ खोजने की है, चरित्र और ईमानदारी पर फोकस करने की।
हाँ, और दबाव में गरिमा बनाए रखने की कला, और ये कि हमारे चुनाव कितने मायने रखते हैं।
उनके अपने संघर्ष भी थे, शादी का टूटना, आलोचना सहना, और जीतें भी थीं, ऑस्कर, डायरेक्शन में सफलता, ये सब जिंदगी के हिस्से हैं।
बिल्कुल। लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को, हर नाकामी को सीखने और बेहतर बनने का मौका माना। उनका लचीलापन, उनकी रेजिलियंस सीखने लायक है।
तो इस पूरी चर्चा के आखिर में अगर हमें तीन खास बातें लेकर जानी हो तो वो क्या होंगी?
पहली मेरे लिए एक भावनात्मक सीख है, एन इमोशनल इनसाइट। उनके माता पिता के मूल्यों का उन पर कितना गहरा और स्थायी असर था। वो हमेशा उन्हें याद रखते थे, उनके सम्मान के लिए जीते थे। पिता से मिली सीख की अच्छा नाम बनाए रखना एक पवित्र जिम्मेदारी है। ये दिखाता है कि हमारे चरित्र की नींव हमारे शुरुआती रिश्तों में बनती है।
ये बहुत गहरी बात है। दूसरी सीख?
दूसरी एक बौद्धिक सीख, एन इंटेलेक्चुअल इनसाइट। वो ये कि उन्होंने कला का इस्तेमाल सामाजिक बदलाव के लिए कितनी समझदारी और रणनीति से किया। जानबूझकर गरिमा और जटिलता वाले किरदार चुनना ताकि रूढ़ीवादी सोच टूटे, ये उनका मानवीकरण का घुरिला युद्ध था। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि सोच समझकर उठाया गया कदम था। प्रतिभा और ईमानदारी उनके हथियार थे।
सही। और तीसरी सबसे अहम सार्वभौमिक सीख?
तीसरी एक सार्वभौमिक सीख, अ यूनिवर्सल इनसाइट, जो इस किताब का सार है। किसी भी इंसान का असली माप उसकी बाहरी उपलब्धियों, उसके पैसे या शोहरत में नहीं है। असली माप है उसके चरित्र में, उसकी ईमानदारी में और इस बात में कि वो अपनी जिम्मेदारियों को, खास तौर पर अपने परिवार के प्रति, कैसे निभाता है। ये बात हम सब पर लागू होती है।
बिल्कुल। पैसा शोहरत आते जाते हैं पर चरित्र और ईमानदारी ही आखिर तक साथ रहते हैं।
यही असली माप है, द मेजर ऑफ अ मैन।
एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र AI की मदद से तैयार किया गया है।